Biz al glory su shishe guru and shigoram. Hare Krishna, सभी का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में. और हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय से पाठ कर रहे हैं. दशम स्कंद का दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 35 आपके बोर्ड पर यहाँ पर मौजूद है. तो हम सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद क्रम को जो है हम आगे बढ़ाएंगे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भग सो श्लोक संख्या 35 हम सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर क्रम को आगे बढ़ाएंगे. अध्याय का शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति. सत्वम नचे धाता निजम इदम निजम भवेत. सत्वम नचे धाता इदम निजम भवेत. अच्छा ठीक है, दोबारा करते हैं. सत्यम नचे धाता निजम इदम भवेत. आता निदम निजम भवे. विज्ञानम अज्ञान विधापमार्जनम. गुणा प्रकाश अनुमीयते भवान. प्रकाशते यस्य च येन वा गुणा. सत्वं वचे धातार इदं निजं भवेत्. विज्ञानमज्ञान विदपामार्जनम्. गुणा प्रकाश अनुमीयते भवान. प्रकाशते यस्य च येन वा गुणा. सत्यं न चेत् धातार इदं निजं भवेत्. विज्ञानमज्ञान विदपामार्जनम्. गुणा प्रकाश अनुमीयते भवान. प्रकाशते यस्य चैन वा गुणा. शब्दार्थ हमारे पीछे दे रहा है. शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा. श्री प्रभुपाद की जय. शब्दार्थ सत्वम शुद्ध सत्व दिव्य ना नहीं चेत यदि धातः समस्त कारणों के कारण इदम यह निजम मेरा आध्यात्मिक भवेत हो जाता. विज्ञानम दिव्य ज्ञान अज्ञान भिदा तमोगुण को भगाने वाला. अपमार्जनम पुण्य पूर्णतया से विलुप्त. गुण प्रकाश ऐसा दिव्य ज्ञान जागृत करके. अनुमीयते प्रकट होता है. भवान आप. प्रकाशते प्रकट होते हैं. यस्य जिसके च तथा येना जिससे वा अथवा गुणः गुण या बुद्धि. अनुवाद सुनिए. हे कारणों के कारण ईश्वर, यदि आपका दिव्य शरीर गुणातीत न होता तो मनुष्य पदार्थ तथा आध्यात्म के स्तर को न समझ पाता. आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को जाना जा सकता है, क्योंकि आप प्रकृति के नियंता हैं। आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति में, माफ कीजिए, आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना कठिन है। तात्पर्य है, काफी विस्तृत तात्पर्य है। श्री प्रभुपाद ने काफी विस्तृत तात्पर्य दिया इस बड़े, बहुत सारे पहलू हैं इसके अंदर। ध्यान, तात्पर्य कहाँ गया है? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुना। अध्यात्म को जाने बिना भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जाना जा सकता। हम आगे देखेंगे अध्यात्म शब्द का मतलब क्या है। यहाँ श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 14वें अध्याय के 29 श्लोक में कहा गया है, अथापि देव पदाम्बुजाया प्रसाद लेशाग्नुगृहत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान विमनो न चान्य एकोप्यचिर विचिन्वन्। भगवान की कृपा होने पर ही उन्हें समझा जा सकता है। प्रकृति के गुणों में स्थिर रहकर हजारों वर्षों के चिंतन के बाद भी उन्हें नहीं समझा जा सकता। भगवान के असंख्य रूप हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठान। और यदि भगवान रामचंद्र, नरसिंहदेव, कृष्ण तथा बलराम जैसे दिव्य रूप दिव्य न होते तो अनंत काल से भक्तों द्वारा इनकी पूजा क्यों चली आ रही होती। बड़ा रोचक है, क्योंकि रूप दिव्य है तो ये इसका मतलब जो है, जो मैं समझ पाया था कि ये इसका, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि जब इसका अवतार होगा उसके बाद इनकी पूजा होगी। इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, अवतार हुआ है अवतार नहीं हुआ है इनकी पूजा होती। सो इसीलिए जैसे विष्णु ही हो गए तो पृथ्वी लोक में विष्णु नहीं उतरते, गर्भोदक्षाई शिरोदक्षाई महाविष्णु महाविष्णु उतर के आए नहीं, अवतार कोई ना कोई होता मगर पूजा होती है उनकी। तो उसी तरीके से कि ये इससे, ये दिव्य का मतलब ये है कि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि इनका अवतार हुए हों चाहे नहीं हुए हों। जैसे कल्कि की पूजा भी मंदिर है, अवतार थोड़ी ना हुए अभी। तो उसी तरीके से भक्त्या माम अभी जाना थी यावान जश्वास में तत्वता, भागवत गीता 18वें अध्याय 55वां श्लोक। जो लोग भगवान की उपस्थिति में अपने दिव्य स्वभाव को जागृत कर लेते हैं और भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, वे ही भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र तथा अन्य अवतारों को, जो इस भौतिक जगत के नहीं होते अपितु जनता के हितार्थ वैकुंठ से आते हैं, समझ सकते हैं। जो इस विधि का पालन नहीं करता वह प्रकृति के अनुसार मनमाने ढंग से ईश्वर की किसी रूप की कल्पना कर लेता है और भगवान के प्रति असली ज्ञान को कभी जागृत नहीं कर सकता। भक्त्या माम अभी जानाति यावान जश्वास्मि तत्वता, प्रभुपाद ने दोबारा सेम श्लोक उद्धृत किया। कथन इस बात का द्योतक है कि भक्ति के विद्वानों के अनुसार भगवान की पूजा किए बिना दिव्य स्वभाव को जागृत नहीं किया जा सकता। भगवान की अनुपस्थिति में भी मूर्ति पूजा भक्त के दिव्य स्वभाव को जागृत करने वाला है, जिससे भक्त भगवान के चरण कमलों में और अधिक अनुरक्त हो जाता है। बड़ी कृष्ण के प्रादुर्भाव से भगवान की समस्त काल्पनिक मूर्तिकला का उत्तर, कृष्ण के प्रादुर्भाव से भगवान की समस्त काल्पनिक मूर्तिकला का उत्तर मिल जाता है। आइकोनोग्राफी अंग्रेजी में और तरीके से लिखा हुआ है। एनीवे, प्रत्येक व्यक्ति अपने गुणानुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान सबसे प्राचीन पुरुष है। इसलिए अब बड़े सारे प्रभुपाद ने जो है यहाँ पर आर्गुमेंट्स दिए, 6 आर्गुमेंट्स है कम से कम। इसलिए कुछ धार्मिक समुदाय ईश्वर को अत्यंत प्राचीन मानते हैं, अतः वे ईश्वर का अंकन एक अत्यंत वृद्ध पुरुष के रूप में करते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी सफेद दाढ़ी। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका विरोध हुआ है। यद्यपि ईश्वर समस्त जीवों में प्राचीन है किंतु साथ ही वे नित्य युवा है। श्रीमद् भागवत में इसका उनका यथार्थ वर्णन इस प्रकार हुआ है, विज्ञानम अज्ञानम भिदापार्जनम। यहाँ पर दोनों चीजें, विद्वान विज्ञान का अर्थ है ईश्वर का दिव्य ज्ञान, विज्ञान अनुभूत ज्ञान भी है, रियलाइज नॉलेज। दिव्य ज्ञान को शिष्य प्रणाली की परंपरा से, जहां पर डिसाइपलिक सक्सेशन का अनुवाद जो दिया गया शिष्य प्रणाली में से उसी तरह ग्रहण किया जाता है जिस तरह ब्रह्मा ने कृष्ण के ज्ञान को ब्रह्म संहिता में प्रस्तुत किया है। ब्रह्म संहिता विज्ञान है जो ब्रह्मा द्वारा अनुभव किया गया दिव्य अनुभव है। इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में कृष्ण की लीलाओं को तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। अज्ञान विद्या का अर्थ है जो समस्त प्रकार की कल्पनाओं का सामना कर सके। जय श्री राधा राधिकन भगवान की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री गौर निताय की, जय श्री भगवान बल्द सुद्र मान्य की, जय। लोग अज्ञानवश फिलोसफिकल, पूरा तात्पर्य बड़ा फिलोसफिकल है, चलिए दार्शनिक, लोग अज्ञानवश भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं। इस तरह उनकी कल्पनाओं के अनुसार कभी उनका स्वरूप होता है तो कभी नहीं भी होता। लेकिन ब्रह्म संहिता में कृष्ण की प्रस्तुति एक विज्ञान है, विशिष्ट अनुभूत ज्ञान, जिसे विज्ञान का मतलब प्रभुपाद बता रहे, विशिष्ट अनुभूत ज्ञान जिसे ब्रह्मा ने अनुभव करके प्रस्तुत किया और महाप्रभु चैतन्य ने स्वीकार किया। इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ब्रह्मा ने प्रस्तुत किया और महाप्रभु ने स्वीकार किया, ऐसा क्यों? अचानक महाप्रभु कहां से आ गए बीच में? ब्रह्म संहिता, ये किताब किसी और संप्रदाय में नहीं मिलती हमारे संप्रदाय के अलावा, इसलिए ये महाप्रभु उठा के लाए थे साउथ इंडिया से, इसलिए महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया। कई बार सवाल उठता है इसको लेके, स्कॉलरशिप आप लोगों को नहीं पूछेंगे जनरली, तो आम लोगों को तो पता नहीं होता ऐसी कोई ऐसी किताब भी है, वो किताब होती भी तो कोई पढ़ता नहीं है, मगर स्कॉलरस्टिक सर्कल्स में जो है ये सवाल उठता है कई बार कि ये किताब जो है जेन्युइन भी है कि बकवास है। क्यों? क्योंकि एक चैप्टर, एक किताब है जिसमें आप 100 अध्याय बताते हैं, एक ही अध्याय आपके पास है वो भी 5वां जिसमें गोविंदम आदि पुरुषम बताया हुआ है, बाकी सारे अध्याय का है। तो ये जो है कई बार ये आरोप स्कॉलरस्टिक सर्कल्स में लगता है कि ये किताब, यहाँ तक आरोप लगता है कि ये किताब महाप्रभु ने लिखी है, लिख के जो है अपनी फिलोसफी को जो है ये सबके सामने, ये फिलोसफी एस्टैब्लिश करने के लिए किताब ही लिख दी पूरी, लिख के ये चिपका दिया ब्रह्मा जी के नाम पर। और ऐसा है तो हमारे शिल प्रभात के गुरु भाई थे, उनको ये सवाल पूछा गया था, बोला कि ये आर्गूमेंट दिया गया था कि स्कॉलर्स कहते हैं कि ये किताब जो है ये कहीं नहीं है, ये सिर्फ आपके यहाँ मिलती है और ये एक ही अध्याय है, 100 में से 99 अध्याय का है, इसका 5वां अध्याय है और इसमें गोविंदम आदि पुरुषम है, ये महाप्रभु लेके आए थे, इसका मतलब महाप्रभु ने किताब लिखी है। तो उन्होंने बहुत खुश हो गया, वो प्रभात के गुरु भाई कहते तो बहुत अच्छी बात है, अभी तक तुम्हें पता था महाप्रभु की लिखी हुई कोई किताब ही नहीं है, शुक्र है किताब तो है। इसका फिर यही जवाब है, फिर खैर ऐसे लोगों का यही जवाब है। इसीलिए महाप्रभु ने स्वीकार किए, ब्रह्मा जी ने अनुभूति प्रस्तुत की, महाप्रभु ने स्वीकार की। इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का स्वरूप, श्री कृष्ण की बांसुरी, श्री कृष्ण का रंग सभी वास्तविकताएं हैं। तो यहाँ पर कृष्ण के वो 4 स्पेशल क्वालिटीज का उल्लेख करें प्रभु। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञानम सभी प्रकार की कल्पनाओं को सदा पराजित करने वाला है। इसलिए देवताओं ने स्तुति की कि जब तक आप कृष्ण रूप को में प्रकट नहीं होते तब तक न तो अज्ञान भिदा काल्पनिक ज्ञान की अविद्या, न ही विज्ञानम की अनुभूति होती है। तो पहले विज्ञानम, इतने देर तक विज्ञानम प्रभुपाद ने बताया पूरा पैराग्राफ, अब यहाँ पे अज्ञान भिदा शब्द का बता रहे, काल्पनिक ज्ञान की अविद्या। अज्ञान भिदापमार्जनम, आपके प्राकट्य से अज्ञान की कल्पना लुप्त हो जाएगी और ब्रह्मा जी जैसे महाजनों का असली अनुभूत ज्ञान स्थापित हो सकेगा। लोग 3 गुणों से प्रभावित होकर अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकारों में ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस तरह ईश्वर की को विभिन्न प्रकारों से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से इसका सत्यापन हो जाएगा कि ईश्वर का असली स्वरूप क्या है। ओके। निर्विशेषवादी सबसे बड़ी भूल यह सोचने की करते हैं कि जब भगवान अवतरित होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। ये क्रक्स है। अगर आप ये जानना चाहते हैं मायावाद का मतलब क्या है, ये क्रक्स है। कई बार इस सवाल पूछते हैं, मैंने डिफरेंट सर्कल्स में देखा, पुराने पुराने भक्तों को जो है इसके बारे में जो है ठीक से इसको ठीक से बयान करने में बड़ी दिक्कत होती है। मनिया प्रॉपर ने एक लाइन में इसको कवर किया। निर्विशेषवादी की सबसे बड़ी इसलिए दोहरा रहा हूँ, निर्विशेषवादी की सबसे बड़ी भूल ये सोचने की है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सतोगुण एंड शुद्ध सत्व। लोगों का ये समझना है कि जब सतोगुण 100% क्लीन हो जाता है तो शुद्ध सत्व बन जाता है। सतोगुण जब 100% सतोगुण होता है तो शुद्ध सत्व कहते हैं। बिग बड़ा काटा लगा लीजिए, बिल्कुल और चीज है। उसका सतोगुण का शुद्ध सत्व से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, इतना सा भी लेना देना नहीं है। आप 100%, 200%, 500% जिस तरह मर्जी इसको साफ करते रहिए, जब आप जिस चीज को साफ करते हैं इसका मतलब एसेंशियली गंदा है। जब आप कह रहे हैं कि इसको साफ किया गया, प्यूरिफाइड, प्रभा जहां पे इस्तेमाल करते हैं, जहां पर वर्ड प्यूरिफाइड है इसका मतलब है वो मवातिक है, खत्म। प्योर वर्ड भौतिक के लिए इस्तेमाल होता है, स्पिरिचुअल होगा वो, आध्यात्मिक है। ओके। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का स्वरूप किसी भी भौतिक विचार से परे होता है। यहां तक कि सबसे बड़े निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया, नारायण परे अव्यक्तात्। ये जो अव्यक्तात् शब्द है ये शुद्ध सत्व है। अव्यक्त शब्द, अव्यक्तात् शब्द हमारे देखेंगे, हमारे आचार्य जो है खासतौर पर सनातन गोस्वामी अव्यक्त शब्द की परिभाषा जो है शुद्ध सत्व से दे रहे, इसका कोई लेना देना नहीं है सत्वगुण से। यह भौतिक सृष्टि अव्यक्त द्वारा की जाती है, समझ आ रही, अव्यक्त द्वारा सृष्टि की जाती है यानी शुद्ध सत्व, और किसी कृष्ण किसी भी भौतिक विचार से परे है। श्रीमद् भागवतम में इसे ही शुद्ध सत्व या दिव्य कहा गया है, अव्यक्त को शुद्ध सत्व कहा भागवतम में। सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, शुद्ध सत्व भगवान सतोगुणी नहीं है, क्लियर बिल्कुल, क्योंकि वे भौतिक सतोगुण पद से ऊपर है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है। देवताओं की ने स्तुति की, हे प्रभु जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न नाम तथा स्वरूप धारण करते हैं। आपका नाम भगवान कृष्ण है क्योंकि आप सर्व आकर्षक हैं। ये देखिए परिस्थितियों के द्वारा के अनुसार भिन्न भिन्न नाम। सो जैसे बाइबल में कहा जाता है गॉड हैज नो नेम, एब्सोल्युटली ट्रू है, भगवान का अपना कोई नाम नहीं है, भगवान के नाम जो है परिस्थितियों के अनुसार है यहाँ, क्योंकि ठीक है जैसे कि सबसे जो है देवता, जो देवता खुद ही जो इसका उदाहरण दे रहे हैं, आपका नाम भगवान कृष्ण है क्यों, क्योंकि आप सर्व आकर्षक है, हर वजह होगी। आप श्याम सुंदर कहलाते हैं क्यों, क्योंकि आपका सौंदर्य दिव्य है। श्याम का अर्थ सांवला है, फिर भी वे कहते हैं कि आप हजारों कामदेव से अधिक सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय, यद्यपि आप श्याम मेघ जैसे रंग वाले हैं किंतु आप परब्रह्म हैं, अतएव आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से भी अधिक आकर्षक है। आप कभी कभी गिरधारी कहलाते हैं, क्योंकि आप क्यों कहलाते हैं गिरधारी, क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत को उठाया। आप कभी कभी नंदन नंदन वासुदेव देवकी नंदन कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि आप महाराज नंद देवकी या वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम या स्वरूप आपके कार्य विशेष के अनुसार होते हैं क्योंकि वे आपको भौतिक दृष्टि से देखते हैं। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है हमारे ये एक्सक्लूसिवली शिल प्रभात ने लिखा, ये किसी भी पूर्ववर्ती आचार्य की टीका से नहीं मिलता, शिल प्रभात ने भरपट दिया इस पूरे बात को समझाने के लिए, पूरा पैराग्राफ एक्सक्लूसिवली प्रभात। हे भगवान आपको समझने की विधि यह नहीं है कि आपके परम स्वभाव रूप या कार्यकलापों की कल्पना की जाए, भक्ति में संलग्न होने पर ही आपके स्वभाव, आपके दिव्य स्वरूप, नाम तथा गुण को समझा जा सकता है। वास्तव में जिसे आपके चरण कमलों की सेवा करने में तनिक भी रुचि होती है, वह आपके दिव्य स्वभाव, रूप तथा गुण को समझ सकता है। रसाद लेशान एव ग्रहित एव ही, जो श्रील प्रभुपाद ने शुरू में श्लोक कोट किया, उसको प्रभुपाद दोबारा दोहरा रहे। अन्य लोग हजारों वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी आपके एक अंश को भी नहीं जान सकते, भागवत गीता में भगवान कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण कभी भी अभक्तों की समझ में नहीं आते, क्योंकि कृष्ण का वास्तविक स्वरूप योग माया के आवरण से ढका रहता है। भागवत गीता से 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में पुष्टि होती है, नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं हर एक को दर्शन नहीं देता। जब कृष्ण आए तो वे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वास्तव में उपस्थित हुए और सबों ने उन्हें देखा, किंतु सभी लोग यह नहीं समझ पाए थे कि वे भगवान हैं। तथापि जो भी उनके सामने मरा उसे भवबंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई और वो वैकुंठ लोक को गया, वैकुंठ लोक को गया। चूंकि मूढ़ लोग अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत नहीं करते, इसलिए वे कृष्ण या राम को नहीं समझ पाते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषं धनुर्माश्रितम्। यहां तक कि बड़े बड़े विद्वान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि वे उन आचार्यों को के प्रयासों पर विचार नहीं करते जिन्होंने अपने भाष्यों तथा लेखों में भक्ति की संस्तुति की है। तो ये इनफैक्ट यहां पर जो है, तीन आचार्य हमारे जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, तीनों ने एक ही सवाल पूछा है। इसमें अगर सवाल पूछा है इस पूरे पर्पट के अंदर, अंग्रेजी में सवाल वो बनेगा, व्हाट इज द यूज ऑफ भक्ति, व्हाट इज द भक्ति की क्या जरूरत है। तो ये इस बिना पे जो है वो ये सवाल, ये तीनों ने एक ही सवाल पूछा, व्हाट इज द यूज ऑफ भक्ति। दिव्य ज्ञान के अभाव तथा कृष्ण भावनामृत ज्ञान को जागृत करने की असफलता के कारण ऐसा होता है। मनुष्य को प्रश्न करने का इतना सामान्य बोध होना चाहिए कि यदि कृष्ण या राम काल्पनिक होते तो श्रीधर स्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वीर राघव, विजयध्वज, वल्लभाचार्य जैसे प्रकांड विद्वान एवं गण्यमान्य आचार्य श्रीमद् भागवत का भाष्य लिखने तथा कृष्ण के विषय में रचना करने में इतना समय क्यों गवाते। तो खैर, सामान्य लोग तो खैर ज्यादातर लोग इनका नाम नहीं जानते, मगर जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको कुछ मालूम होता है, तो उनके लिए ये सवाल जो है आता है। क्योंकि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर जो है विद्वानों की बात कर रहे हैं इस वाले पैराग्राफ के अंदर। तो बड़े सारे सवाल इसके अंदर, बड़े सारे पहलू इसके अंदर निकल के आते हैं। और मैं टाइम ज़्यादा नहीं है, वी हैव टू फिनिश। एक्चुअली पूरा का पूरा जो तात्पर्य है, तात्पर्य प्रभुपाद ने, क्योंकि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने भी तात्पर्य को इस तरीके से लिखा है, जैसे कि मान लो कि आप डिफेंसिव हो गए हो, जैसे बहुत देर से जो आप पे हमला हो रहा है और आपको कुछ मिल नहीं रहा। वो क्या है हमला, क्या हो रहा है? ब्रह्म है, ठीक है। आप ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है वो ब्रह्म की कल्पना नहीं हो सकती, ब्रह्म की व्याख्या भी नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म की कल्पना, ब्रह्म की व्याख्या नहीं हो सकती। नेति नहीं हो सकती। तो ये नहीं है नेति। अब क्या कर, जब नहीं हो सकती, पीछे जाते जा रहे, वो बोल रहे नहीं हो सकती। और अचानक क्या हो रहा है? धड़ाम। यहाँ पे प्रभुपाद जो है यहाँ पर ये लाइन लिख रहे हैं, ये इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, हिंदी में मेरे को भी लाइन ठीक से नहीं समझ आई, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ आपके लिए। वो कहाँ चला गया, श्रील प्रभुपाद का पैराग्राफ शुरू हो रहा है। द अपीयरेंस ऑफ कृष्णा इज द आंसर टू ऑल इमेजिनेटिव आइकोनोग्राफी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, आंसर टू ऑल इमेजिनेटिव आइकोनोग्राफी। तो ये है जवाब। हमारा जवाब क्या है? हमारा जवाब है सीधा कृष्ण का अवतार। अब क्या जवाब, अब क्या बोलोगे? ब्रह्म की कल्पना नहीं हो सकती, ब्रह्म का आकार कल्पना जब नहीं कर सकते उसके आकार, कोई भी चीज, कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं, आप नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, धड़ाम सामने साथ है, ये रे कृष्णा, अब बता, तो इस तरीके से, अब बता, अब क्या करेगा, अब बता, ये रे, इनकी कल्पना भी हो सकती है, इनकी आकार भी है, इनका रूप भी है, इसलिए पूरा पैराग्राफ श्री प्रभुपाद ने, तो इट्स लाइक इसे काउंटर वेट देना, तो बहुत देर से जो है सुने जा रहे हैं, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बिकॉज बात ठीक है, ब्रह्म की कल्पना नहीं हो सकती, मगर भगवान तो, यानी कि भगवान का जो पूरा मतलब डेफिनेशन है, जो भगवान की अकल्पनीय जो हिस्सा है दैट इज द ब्रह्म, और जिस चीज की, और जो वर्णनीय हिस्सा है, कल्पनीय नहीं बोलूंगा, वर्णनीय जो हिस्सा है दैट इज भगवान, जिसका वर्णना नहीं कर सकते वो ब्रह्म है, जिसकी वर्णना कर सकते हैं भगवान है, तो दैट इज, वो सर्कल को पूरा करता है, तो यहां से इसलिए यहां पर इतने देर से जो श्रील प्रभुपाद उसके बाद भगवान के रूप, भगवान के नाम उस पर जो है उस पर स्ट्रेस करे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो श्लोक है, जैसे आप जानते हैं, क्योंकि इसका अध्याय का शीर्षक ही यही है कि देवताओं द्वारा प्रार्थना, तो इस श्लोक में खासतौर पर हमारे पूर्ववर्ती आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर जो है उनके आध्यात्मिक शरीर की जो है वर्णना का की वर्णना हो रही है, कहाँ गया, हाँ ये रहा ना, यदि आपका दिव्य शरीर गुणातीत न, यदि आपका शरीर, तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य है वो देवकी के मतलब गर्भ में है ना भगवान, तो देवकी के गर्भ में उंगली से इशारा करके दिखा रहे हैं, अगर ये आपकी, इट्स लाइक स्पेसिफिक, तो इस तरीके से विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बताने की, वो भाव निकल के आ रहा है, और उसी तरीके से जो आपके सनातन गोस्वामी हैं तो वो बता रहे हैं कि देवता बड़े खुश हैं इस वजह से कि वो मुंह तोड़ जवाब उन लोगों को मिलता है कि जो कहते हैं भगवान की वर्णना नहीं हो सकती, ब्रह्म की वर्णना नहीं हो सकती, तो वो इसलिए उनके वॉइस मॉड्यूलेशन हो रहा है कि खुश, जैसे बंदा होता है ना प्रार्थना जब करता है तो बंदा बहुत ही कैसे मैं बताऊँ उसको, बड़े धीर शांत भाव से बंदा प्रार्थना करता, मगर अभी प्रार्थना के अंदर जब वो जज्बात निकल के आ रहे हैं तो आवाज़ तेज हो गई है देवताओं की, सनातन गोस्वामी ऐसा बता रहे हैं, तो इस तरीके से ये निकल के आ रहे हैं कि जब अगर अदरवाइज, क्योंकि जहाँ पे ये जैसे है ना कि नहीं तो ये पूरे जितने भी अवतार हैं, अवतारों के माने का क्या मतलब है, अदरवाइज अवतारों के आने का मतलब ये है कि वो उसका जवाब है कि जिसकी वर्णना नहीं हो सकती तो उसके अवतार की जरूरत भी नहीं है, पर जिसकी वर्णना हो सकती है वो हो ही इसलिए सकती है क्योंकि उनका अवतरण हो रहा है, तब जाके उनकी वर्णना हो रही है, तो दोनों एस्पेक्ट, तो जब भगवान का जो ये यहाँ पर एक कई सारे चीज़ें एक्चुअली मैं और कवर नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, मगर यहाँ पर प्रभुपाद के तात्पर्य में बीसियों चीज़ें, दो सवादों पेज का तात्पर्य फिर इसी वजह से कि जैसे भगवान को देखना, ये इसका जो है काफ़ी देर तक प्रभुपाद यहाँ पर भगवान को दर्शन देने पर काफ़ी कुछ लिखा प्रभुपाद ने कि भगवान सबको दर्शन नहीं देते, यानी कि भगवान किस किस को दर्शन देते हैं, तो ये आखिरी का पैराग्राफ जैसे कि जिसका कृष्ण भावनामृत जग गया है तो उसको दर्शन देते, तो कृष्ण भावनामृत जगने का क्या मतलब होता है, एक्चुअली अवेकनिंग जो है, अवेकनिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो इसका मतलब शुरुआत तो ये हो गया कि श्रद्धा, हालांकि शुरुआत में प्रभुपाद ने बोला जिसके पास थोड़ी सी भी श्रद्धा है, जिसका थोड़ा सा भी ये रुझान है तो वो मुझे प्राप्त कर सकता है, तो वो ये जो दिव्य ज्ञान है जो कि यहाँ पर इसलिए इस श्लोक में दोनों शब्द काफी देर से, विज्ञानम अज्ञानम, यानी विज्ञान का मतलब जो भगवत साक्षात्कार जिससे होता है, और इसलिए साक्षात्कार, इसलिए भगवत साक्षात्कार शब्द आएगा, इसलिए साक्षात्कार को दो पैराग्राफ प्रभुपाद ने पूरा उसको की व्याख्या की कि साक्षात्कार का मतलब है अनुभूति, अनुभूति, अब वो अनुभूति कैसे आती है श्री प्रभुपाद उससे पहले कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है, जो ये आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि पूर्ववर्ती आचार्यों के इसको पढ़ के सुन के समझ के और सेवा करके, और सेवा कैसे करके, आप उसकी सेवा कैसे कर सकते हो जो मौजूद ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि आप कह रहे हो भगवान की सेवा, भगवान तो मौजूद ही नहीं है आपके सामने, सेवा उसकी हो सकती है जिसकी मौजूदगी हो, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इसका जवाब वहां पर दे रहे हैं शुरू में ही, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ, डीटी वर्शिप इन इवन इन द एब्सेंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान के अनुपस्थिति में भी, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं, भगवान की अनुपस्थिति में भी, मैंने किताब में तो नहीं मार्क किया, पहले पैराग्राफ में ही है, ये रहा पहले पैराग्राफ का आखिरी लाइन, भगवान की अनुपस्थिति में भी मूर्ति पूजा भक्त के दिव्य स्वभाव को जागृत करने वाली है। तो ये उसका क्रक्स, मतलब उसका क्रक्स नहीं है, ड्रिफ्ट है उस तरफ। और उसके बाद क्या है, और यहाँ पे उसके बाद लिख रहे हैं, जिससे भक्त भगवान के चरण कमलों में और अधिक अनुरक्त हो जाता है, और अधिक लिखा है, इंग्लिश में लिखा है बिकम्स इंक्रीजिंगली अटैच्ड। इंक्रीजिंगली शब्द का थोड़ा मतलब और होता है, इंक्रीजिंग का मतलब है कि क्रम से, क्रमिक, धीरे 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 वो बढ़ता चला जाता है, जबकि भगवान उस तरीके से मौजूद नहीं है जिसकी सेवा हो सके, तो मगर करा जा सकता है इस तरीके से जो है। तो अव्यक्त की जो है वो व्यक्त जब होता है इस तरीके से, फिर उनकी सेवा करी जा सकती है और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये जो भगवान, और उसके बाद इसलिए श्रील प्रभुपाद ने पूरा एक पूरा पैराग्राफ, दो पैराग्राफ दिए जिसके अंदर भगवान के नाम, अलग अलग नामों का मतलब, तो वो क्यों, क्योंकि भगवान से आकर्षित होना यहाँ पर, तो भगवान के, भगवान का इससे जब आकर्षित ये होना, कृष्ण से आकर्षित होना, तो कृष्ण से आकर्षित होना स्पेसिफिकली, भगवान के सारे गुणों से लोग आकर्षित होते हैं इसमें कोई शक नहीं है, मगर भगवान के रूप से आकर्षित होना ये एक बड़ा, क्यों, क्योंकि जब आप अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, जैसे यहाँ पर ये स्ट्रेस इस तरफ है, तो वहां पर, क्योंकि अगर आप अर्च विग्रह को हटा देते हैं तो सिवाय अव्यक्त के आपके पास कुछ नहीं बचता, तो रूप नहीं है, तो रूप नहीं है तो फिर आप, फिर यही है कि इंडिस्क्राइबेबल है, तो जो चीज इंडिस्क्राइबेबल है, तो यहाँ पर प्रभुपाद ने निर्विशेषवाद की बात करी है, जिसे एक लाइन में उनको जो समझाया है कि क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट जो है वो अभी ये वाला पार्ट नहीं उन्होंने देखा, या नहीं समझ आ रही है बात ये वाली, और ये तब तक समझ नहीं आती है जब तक भगवान के कोई अवतार नहीं, अवतरित नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है समझना, क्यों, क्योंकि भगवान का अवतार जी, देखिए जैसे कि, जैसे यही है सामने, कृष्ण है भगवान के, ये रूप है, चलो ये नहीं लेते और ले लेते हैं, मत्स्य ले लेते हैं, वराह ले लेते हैं, कूर्म, ऐसा कोई रूप नहीं उतरा कि जिस जो रूप पहले से इस दुनिया में मौजूद ना हो, ऐसा भगवान का कोई रूप नहीं निकला कि ये क्या उतरा, एक नरसिंह देव को छोड़ के, उसमें भी आप नरसिंह कहते हैं, इतनी कम से कम सादृश्यता है कि आधा शेर है जी, आधा इंसान है, चलो ऐसा कोई रूप नहीं उतरा कि जो सैंपल यहां नहीं मिलता पहले, तो इसीलिए उस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं 84 लाख योनी, उन्हीं में उसी योनी जैसा देखने वाला एक शख्स जब उतर के आता है, तो अब उसमें कैसे फर्क करेंगे। तो वहां पर जो है पूर्ववर्ती आचार्य जो है सनातन गोस्वामी खासतौर पर कह रहे हैं कि एक ही उसका वो है, मतलब जो स्टैंड अपार्ट करता है, इनकंसीवेबल स्ट्रेंथ, ऐसी ताकत जो कि मुमकिन नहीं है किसी जीव के अंदर, तो वहां पर सिर्फ ताकत है, भगवान को जानना चाहते हो, भगवान की वो ताकत है। अब इन जितने भी अवतार हैं, आप उनमें उनकी ताकत देख लीजिए, एक मछली की ताकत सोच लीजिए और मीन अवतार की ताकत सोच लीजिए, एक सुअर की ताकत सोच लीजिए और वराहदेव की ताकत सोच लीजिए, एक क्या नाम है कछुआ, सारी दुनिया हस्ती है, और कूर्मदेव की ताकत समझ लीजिए, एक इंसान की ताकत समझ लीजिए, और एक गोवर्धन उठाने वाले गिरधारी की ताकत समझ लीजिए। तो इसलिए वो नाम श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण के वो सारे नाम इस्तेमाल किए, जब ये अवतार को जो है, ये यानी कि ये साबित करता है ये सतोगुण का मामला नहीं है, ये शुद्ध सत्व का मामला है। सतोगुण में कोई ऐसी ताकत होती है कि बंदा इस तरह के काम कर ले, जो आप भगवान के अवतारों में देखते, कि क्योंकि अगर वो सतोगुण का होता तो इस दुनिया में सतोगुणी लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं मिलते, तो क्यों नहीं दिखाते उस तरह की ताकत, इसका मतलब वो सतोगुण है ही नहीं, क्योंकि यही उनका जो है, जो जहां से मायावाद शुरू होता है, निर्विशेषवाद खासतौर पर, मायावाद निर्विशेषवाद शुरू होता है, वो शुरू ही इस बुनियाद पर होता है कि एक गुण है और एक गुणों से अतीत है, जो गुणों से अतीत है वो अव्यक्त है, जो अव्यक्त है वो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, खत्म हो गई कहानी, या यूं कह लीजिए वहां से उनका किस्सा वहां से शुरू होता है। तो यानी जो, अब इसको उल्टा कर लीजिए, जो अव्यक्त है तो वो ब्रह्म है, यानी कि जो व्यक्त है वो ब्रह्म नहीं है। तो जो ब्रह्म नहीं है वो क्या होगा, वो तीनों गुणों में से एक चीज होगी। तो चलो जी अवतार आ गया, इसको सतगुणी कह लो। तो ये उनका सिस्टम, मैं दोबारा दोहराता हूं, उनका सिस्टम क्या है कि ब्रह्म यानी जो त्रिगुणातीत होता है, जब वो सतगुण के प्रभाव में आता है, अगर चाहे तो लिख लें इसको, यही डेफिनेशन है। अगर ब्रह्म जो कि त्रिगुणों से अतीत है, वो जब सतगुण के प्रभाव में आता है तो वो अवतार बनता है। अवतार जो है, अब और जीव जो है, जब वो सतगुण के अलावा रजो और तमोगुण के प्रभाव में आता है तो वो बद जीव होता है। समझ आई बात? अवतार तक क्लियर होगा? अवतार का अगला स्टेज ही है जीव का। क्या मतलब हुआ? अब जो सतोगुण में, जब ब्रह्म जो है जब सतोगुण के प्रभावित होता है तो अवतार बनता है, जब ब्रह्म रजो और तमोगुण के साथ में प्रभावित होता है तो वो जीव बनता है। इसलिए वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवैव ब्रह्म एव नापरा, यानी कि जब उसका जीव का तमोगुण रजोगुण सतोगुण हटा लेंगे तो वो ब्रह्म बन जाएगा। उसी तरीके से कि जैसे कि वो अवतार है, वो सतोगुण में, ब्रह्म सतोगुण में आया तो अवतार बनाता, उसका सतोगुण हटा लीजिए अवतार वापस ब्रह्म बन जाएगा। समझ आई बात? इसीलिए वो दिखाते हैं निर्विशेष से, निराकार से साकार निकल के आ रहे हैं, निर्विशेष ब्रह्म से जो अवतार निकल के आ रहे हैं। पेंटिंग्स देखी होगी आपने, बड़ी सी लाइट होती है उसके बीच में से अवतार निकल के आ रहे हैं। उनका सारा जो सिस्टम है वो इस पे बेस्ड है। पीछे एक गोला बना होगा, जब आप देखेंगे हमारे, सिर्फ हमारे संप्रदाय में जो है हम वो पेंटिंग नहीं करते हैं, मगर आप बाहर जाएंगे सारी संप्रदाय की पेंटिंग होती है ये। पीछे एक गोला बना होगा, इस तरीके का एक पीछे गोला बना होगा, और उसका क्या मतलब है? उसका आप समझते होंगे कि उसका मतलब है तेज निकल रहे, तेज तूज नहीं है उसका मतलब। उसका सटल मतलब ये है, वो ब्रह्म निराकार ब्रह्म से साकार निकल के आया, ये मतलब है इसका। वो ब्रह्म तेज जो है, वो ब्रह्म तेज से जो है वो ब्रह्म तेज से अवतार निकल आते, गुरु की क्या औकात है, वो तो आ ही जाता है फिर। तो ये मतलब है, वो वेरी डेंजरस इस तरीके से। तो ये तब जाके, इसीलिए सारे आचार्य इतने खुश प्रभुपाद के ढाई पेज का पर्पट इसलिए निकल के आ गया कि अब आया, जैसे होता ना गेम मारा, इतने देर से इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहे थे। तो ये अवतार का आना जो है तमाचा है उन लोगों के मुंह पर कि अब इसका क्या जवाब दोगे। और ये कहते हैं कि अवतार सतोगुण में आए, तो सतोगुण में इतने एग्जाम्पल है, करके दिखाए काम जो इन्होंने एक अवतार ने करके दिखाया। तो ये, और वो हुआ भगवान की ताकत एक तरफ। तो ताकत से जो है इंसान इन्फ्लुएंस तो होता है, मगर ताकत से प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि ताकत आफ्टर ऑल आपके अंदर डर पैदा करती है। सिक्योरिटी देती होगी मगर प्यार नहीं देती। तो इसीलिए जो है यहां पर फिर भगवान के रूप को लेके, तो जब आप अवतार की ताकत देखते हैं तो वो अपना लोहा मनवा लेती, भगवान कौन है और जीव क्या है। मगर जब वो अवतार जो है, जैसे अर्चा विग्रह जैसे आते हैं, तो वो बात ताकत की नहीं होती है, वहां रूप की बात होती है, वो नजाकत की बात होती है। तो उनसे आप जो है आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि श्रील प्रभुपाद यहाँ पर पहले पैराग्राफ के एंड में जो श्रील प्रभुपाद लिख के दे रहे हैं। तो मैं, टाइम हो गया, मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और इसको आगे नहीं लेके जाते। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, एक आध ले सकते हैं। जी, माइक्रोफोन पड़ा हुआ है, पवित्र प्रभु।
हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही स्कॉलरली क्लास थी। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम प्रभुपाद जी के लेक्चर में बहुत बार सुनते हैं कि विशुद्ध सत्व मीन्स प्योर गुडनेस, और बहुत बार इस बात स्टेटमेंट बोलते हैं कि गुडनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑफन कंटेमिनेटेड बाय पैशन एंड इग्नोरेंस। तो इसको फिर हम ऐसा समझ लेते हैं कि जब प्योर गुडनेस, जैसे आपने बताया कि प्योर गुडनेस मीन्स 100% गुडनेस, तो पर वैसा है नहीं, तो इसको फिर मतलब कैसे इसका इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं?
तभी तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद, आपका सवाल बिल्कुल सही है। और जनरली क्या है ना, इंसान दुनिया में एक चीज को देख के सीखता है या किसी को कंपेयर करके सीखता है, ऐसे ही सीखता है। तो इसीलिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने दो पैराग्राफ ये लिखे, ये अनुभूत ज्ञान है। विज्ञान का मतलब अनुभूत है, विज्ञान का मतलब वो ज्ञान नहीं है जिसको आप देख के सीख सकते हैं या पढ़ के या समझ के सिर्फ। इसीलिए पहला ये श्लोक ही प्रभुपाद ने इसलिए जो है भागवतम का इस्तेमाल किया, प्रसाद लेशानु ग्रहित एव ही, कि ये कृपा से समझ आता है। कृपा का क्या मतलब है? आपका प्रयास इधर से होता है एंड में कृष्णा खुश होते, नायम आत्म प्रवचन न न लभ्य न मेधया न ब्रहुना श्रुतेना। तो ये उपनिषद इसलिए बात करते हैं, वो इसलिए ना के तरफ से बोल रहे होते कि इन सब चीज़ों से जो है ये चीज़ नहीं आती है, यानी सिर्फ इनसे नहीं आती। इसका मतलब नहीं इनका कोई रोल नहीं है, मगर ये उसको मजबूर नहीं कर सकते। तो सतोगुण और विशुद्ध सत्व का जब कंपैरिजन आप पूछ रहे हैं, ये जो शब्द प्रपात ने इस्तेमाल किया प्योर गुडनेस, इसका मतलब क्या है? जब आप इसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
स्टील। स्टील,
स्टील ग्लास, ओके ग्लास, और
ग्लास।
हाँ टम्बलर ग्लास, ठीक हो गया। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बुक। अब जब आपको दो शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हो प्योर और गुडनेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसकी कोई टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, समझे? तो आप वो चीज समझने की बात पूछ रहे हैं जो डिक्शनरी में है ही नहीं, वो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार विज्ञान को अनुभूत ज्ञान है। अनुभूति ऐसी चीज होती है जिसको आप शब्दों में एक हद तक कैद कर सकते हैं, उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। वो अनुभूति का मतलब क्या होता है? जब शब्दों में कैद किया जाता है। प्योर गुडनेस का मतलब क्या होता है? प्योर गुडनेस का मतलब है उन्होंने सातों गुण के शुद्ध सत्व की तरफ एक इशारा कर दिया, समथिंग लाइक दिस। अब आगे जाओ आपको पता लगेगा। इस तरह अनुभूति गोज बियॉन्ड द रेंज ऑफ वर्ड्स। सो ये इट्स नॉट फुल्ली डिस्क्राइब बाई वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। ये इसलिए अब उसको क्या करें, इसलिए प्रॉपर देखें। अच्छा जी शुद्ध सत्व क्या होता है? इस धनातल के सतोगुण जैसा नहीं होता, अब यही बोल सकते। और वही है, इसलिए आप जो जो कई बार भक्त लोग हंसते भी है इस चीज को लेके कि नेति नेति, मत नेति नेति ना करें तो क्या करें? जो चीज है वो चीज अनुभूति से समझी जा सकती है, वो सामने नहीं है। इसलिए कह रहे ये भी आप अर्च विग्रह की सेवा करने के बाद क्या कह रहे हैं? ये सबको अनुभूति होगी किसकी? जो मौजूद नहीं है। वो व्यक्ति जो मौजूद नहीं है उसकी सेवा कैसे करोगे? इसलिए अर्च विग्रह दिए गए। और उनकी सेवा करके आप क्या करोगे? उनकी मौजूदगी महसूस करोगे, महसूस अगेन वही। तो इट गोज बियॉन्ड। कई बार जो है शास्त्र जो है वो इंडिकेशन देख के खामोश हो जाते, क्योंकि वहीं तक जाया जा सकता है। ना तत्र वाक गच्छति ना चक्षु ना मनः, इससे आगे नहीं जाया जाता। तो इसलिए अब वाक नहीं जाता तो शब्द नहीं जाएंगे, चक्षु नहीं जाएगा तो विजन नहीं जाएगा, मन नहीं जाएगा तो इमेजिनेशन नहीं जाएगी। इसीलिए कल्पना अतीत, क्योंकि मन इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स एंड आईज। कल्पना में वो चीज आप बना सकते हो जो आप बयान करना मुश्किल हो जाता है, वो उससे भी आगे। क्यों? क्योंकि ये दो बीच के जो पूरा पैराग्राफ है, मैंने अब तो टाइम नहीं है, छह एस्पेक्ट्स मैंने देखे थे जो प्रभुपाद ने इसमें इस्तेमाल किए कि आदमी मन को का इस्तेमाल करके ईश्वर बना लेता है, फिर भी ईश्वर उसमें नहीं, वो डेफिनेशन ईश्वर की काफी नहीं है, क्योंकि वो जो उसने बनाया है वो जो है आफ्टर ऑल तीनों गुणों का कंसेप्ट है। और यहां ईश्वर की बात हो रही है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आने की वजह से हमें आदत पड़ चुकी है ईश्वर नाम लेते ही, जो है ना कृष्णा विष्णु, हमें आदत पड़ चुकी है, आदत पड़ चुकी है। जैसे हम कृष्ण वो ईश्वर शब्द सुनते हैं, अच्छा इनकी बात करें, इनकी बात नहीं कर रहे। आम जिसको नहीं पता वो नहीं कर रहा होता इनकी बात। तब यहां पे लिखा भी प्रभा ने, वो कभी वो साकार मान लेता है, कभी नहीं मानता, कभी ये मान लेता है कि वो है, कभी यहां भी मान लेता नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन देखो उसका, उसका कंफ्यूजन का रेंज देखो, वो एक तरफ बिल्कुल उल्टी बात है तो वो हार्मोनाइज नहीं कर सकता। तो इसीलिए सर्टेनिटी जो है अनुभूति पर डिपेंडेंट है। और हम पढ़ भी जो क्या रहे हैं, आफ्टर ऑल जो हम कमेंट्रीज पढ़ते हैं, प्रभुपाद आखिरी पैराग्राफ लिख रहे हैं, आफ्टर ऑल पढ़ क्या रहे हैं? अनुभूतियां पढ़ रहे हैं। शास्त्र जो तो लिख दिया है ना, अब अगर कोई कमेंट्री लिख रहा है उसका क्या मतलब है फिर इसके ऊपर? शास्त्र से ज्यादा बड़ी बात लिखने लगा है वो? नहीं, अनुभूति लिखने लगा है। इसीलिए पर्पट शब्द का जो मतलब होता है वो एक्चुअली मतलब तात्पर्य नहीं होता। यहां लिखा होता है हमने तात्पर्य, पर्पट शब्द का मतलब एक्चुअली भावार्थ होता है, क्योंकि अनुभूति पे बेस्ड है। तात्पर्य जो है उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट होगा कमेंट्री। श्रील प्रभुपाद एग्जैक्टली डिडंट राइट कमेंट्रीज, प्रभुपाद रोट पर्पट्स विच मीन्स भावार्थ। क्योंकि वही अब जो डिवोटी का कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो भावार्थ हो सकता है, भाव का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। फैक्ट्स जो है वो शास्त्र लिख चुकी है ऑलरेडी, भगवान लिख चुके हैं शास्त्र। सो दैट्स द होल आइडिया ऑफ गोइंग इनटू इट। फर्दर क्वेश्चन जी।
जैसे आपने बताया कि
क्लास ओवर हो चुकी है, प्रसाद के लिए चले जाएं बाकी लोग।
भगवान का अवतार और नॉर्मल व्यक्ति के बीच में ये डिस्टिंक्शन है कि इनकॉन्सीवेबल स्ट्रेंथ। तो अब जैसा आपने बताया कि सत्वगुण में जो लोग होते हैं मैक्सिमम यहाँ पे वो कुछ कर सकते हैं, पर वो उसको मैच नहीं कर सकते। लेकिन हम फिर भी हिस्ट्रीज में पढ़ते हैं बहुत कुछ, जैसे अगस्त मुनि पूरा लिया और हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा भी लिया उन्होंने भी। तो इनको हम कैसे समझेंगे?
समझ तो रहे हैं। तब अब उसके साथ कंपैरिजन किसके साथ होगा? कंपैरिजन क्या होता है? एक तो देखिएगा ना, ये बड़ा अच्छा है, आपने अच्छा कर दिया सवाल पूछ के। कंपैरिजन के लिए कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट बराबर होने चाहिए। क्या हम किसी भी चीज के साथ किसी का कंपैरिजन कर देते हैं? ऐसे मान लो पत्थर के साथ पानी का कंपैरिजन नहीं होता, पानी का कंपैरिजन तेल के साथ हो सकता है, क्योंकि कंपैरिजन तो कंपेयर्ड ऑब्जेक्ट है, वो तरलता है। तो जब हम स्ट्रेंथ की कंपैरिजन कर रहे हैं कि पर्वत उठा लिया, तो स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हो रहा है। तो एक तरफ उन्होंने पर्वत उठा लिया, उन्होंने समंदर पी लिया, और दूसरा तरफ उसने समंदर बना दिया, उसने दुनिया बना दी। अब आओ इस तरफ,
नहीं, अब
जिस दुनिया के अंदर जो, हाँ तो ये भाई आपके महाविष्णु यही काम करते हैं ना, क्या काम करते हैं? और ना हो ना हो, भगवान का वो है ना, क्या कहते हैं, एक्सपेंशन है ना। तो ठीक है, ना हो तो क्या हुआ?
हमने अवतार और नॉर्मल
जी, इनकंसीवेबल स्ट्रेंथ है ना। तो अब अवतारों की स्ट्रेंथ को आप इनका देख लीजिए। अवतारों का जब स्ट्रेंथ कंपैरिजन में आता है, तो जनरली इस तरह का आम आदमी की स्ट्रेंथ, भगवान अगर किसी को अपनी शक्ति देते हैं, जैसे हनुमान जी को देते हैं, कुछ जगह पे आप कर सकते हो कंपैरिजन इस तरीके से, क्योंकि वो लॉजिक और तरीके से जा रही है। आप कह सकते हो जी ये हनुमान जी ने छलांग मार के पार कर ली, ये रामचंद्र ने छलांग मार के क्यों नहीं पार करी, उनको समंदर का सेतु बनाना पड़ा। अरे बात यही तो है कि उन्होंने समंदर पे सेतु बांध दिया, ये बात हो रही है। अब वो बांध के दिखाते सेतु, आप समझ रहे, कंपैरिजन इस तरफ से जा रहे कि अगर उन्होंने जो है गणमादन क्या कहते पर्वत उठा के ले आए, तो हम देखते कृष्ण के इसमें वो गोवर्धन 7 दिन तक बच्चा उठा के भांगे भाई उंगली में उठा के रखा हुआ उसने। तो कंपैरिजन इस तरीके से जाएगा, ये नॉट दैट कि और क्रिएशन भी जैसे आप बिल्कुल कह सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि क्रिएशन को आप इसके अंदर नहीं ला सकते। जैसे आप उनको देख लें, आप पृथ्वी महाराज हैं, वो एक घोड़ा उन्होंने क्या दौड़ाया रथ के साथ, सातों दो ही पलग हो गए। सो दोज आर इनकंसीवेबल स्ट्रेंथ अवतारों का जीव के साथ।
थैंक यू,
ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, प्रसिद्ध गौर भक्तवृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंद।